आदम और हव्वा के बारे में एक अमूमी हमें पढ़ाया जाता है कि उन्हें एक फल खाने से मना किया गया था, और वो शैतान के बहकावे में आकर उन्होंने वो फल खा लिया, जिसके तौर पर उन्हें सज़ा के तौर पर भेज दिया गया, और हम शैतान को उस पर कोसते भी हैं। मगर आपका नज़रिया इस मामले में काफ़ी मुख्तलफ है कि वो फल नहीं था, एक फेल था जिसे रोका गया था, तो वो फेल से तो नस्ल इंसानियत बढ़ गई, तो हम उस पर शैतान को फिर कोस क्यों रहे हैं? तो ये काफ़ी एक डिस्टर्बिंग फैक्ट लगता है इधर आकर।
शैतान को कोस क्यों रहे हैं? शैतान को बिल्कुल नहीं कोसना चाहिए।
तो
इसकी वजह
उसे
यह है,
हमें
इसकी
ये होता
वजह
है
यह है
सजा
कि
के तौर पर फिर उन्हें जमीन पर भेजा गया, जो उमूमी एक इल्म है, जो
ये
उमूमी
कुरान
एक
ने नहीं कहा कि सजा के तौर पर भेजा गया, यानी उन्हें जिस मकसद के लिए रखा गया था वो मकसद पूरा हो गया। वो मकसद क्या था? वो मकसद ये था कि उन्हें इब्तदाई तालीम दी जाए, उन्हें बताया जाए कि तुम क्या हो, तुम्हारी फितरत क्या है, तुम कैसे काम करोगे, और उन्हें ये बता दिया जाए कि खराबी कहाँ से पैदा होगी। तो आप अगर उस सारे वाक्य को कुरान में पढ़ें तो वो दो चीज़ों की तरफ तवज्जो दिला रहा है। इब्तदाई तालीम अमली तरीके से दी गई, तालीम देने का अमली तरीका ही इब्तदा में मौसर भी होता है। यानी अभी लफ्ज़ उस तरह वजूद में नहीं आए होते, रवायात वजूद में नहीं है। अब मैं जब ये गुफ्तगू कर रहा हूँ तो इस गुफ्तगू के पीछे असल में सदियों की तारीख, अल्फाज बने हैं, मुहावरे वजूद में आए हैं, रोज़मर्रा इस्तेमाल के असालीब वजूद में आए हैं, तो मैं आपको इबलाग कर सकता हूँ। तो जब आपको ये चीज़ें मैसर ना हों तो उसमें अमली तरीका ही बेहतर तरीका होता है, अमली तरबियत का तरीका। तो दो चीज़ों की तरफ तवज्जो दिलाई गई। पहला ये मुजाहरा किया गया कि एक इंतहाई बरतर मखलूक फरिश्ते, उनको हुक्म दिया गया कि मेरी एक मखलूक के सामने जो अपनी खिलकत के लिहाज से तुमसे बरतर नहीं है, उसके सामने सजदा रेज हो जाओ। तो यहाँ सवाल ये था कि आप अपनी तरफ निगाह करेंगे या हुक्म देने वाले की तरफ निगाह करेंगे?
हुक्म देने वाले की तरफ।
अपनी तरफ निगाह करें तो फरिश्ते भी कह सकते थे कि हम तो बहुत बरतर मखलूक हैं, हम तो मलाइका तक रसाई रखते हैं, हम तो बराह रास्त आपके अहकाम सुनते हैं, हम तो दुनिया भर में नज़म चला रहे हैं, कह सकते थे ना ये। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा, और ये देख कर कि हुक्म देने वाला कौन है, वो मिट्टी के सामने सर झुकाने के लिए कह दे तो वो खालिक है, हमें झुकना है। तो ये तालीम दी गई कि अनानियत बहुत बड़ा मसला बनेगी, चुनाचे वो इबलीस के यहाँ बन गई, यानी जिन्नात झुक गए बहुत से लेकिन इबलीस नहीं झुका, और इबलीस को एक ख़ास हैसियत भी हासिल थी जिन्नात में। वो मुतकब्बिर होकर कुरान मजीद ने अल्फाज इस्तेमाल अबा वस्तकबर, उसने इनकार कर दिया और इस्तकबार या तकब्बुर इख्तियार किया। तो पहली बात ये कही गई कि सबसे बड़ा गुनाह तकब्बुर होगा। यही वजह है कि दूसरी जगह ये बयान किया है कि ऊंट सुई के नाके में दाखिल हो सकता है, मुस्तकबिर जन्नत में नहीं जा सकता। तकब्बुर, सरकशी, खुदा के मुकाबले में खड़ा हो जाना सबसे बड़ा जुर्म, ये समझ में आ गया उसके नतीजे में। आदम की समझ में आ गया, हव्वा की समझ में आ गया, अलैहिस्सलाम। यानी ये बात वाज़े हो गई कि हमें अपनी अनानियत नहीं देखनी, अपनी खिलकत के तकब्बुर में मुबतला नहीं होना, खुदा ने जो हमें सलाहियतें दी हैं उनके ज़ोम में मुबतला नहीं होना, बल्कि हकायक के सामने सर झुकाना है। और सबसे बड़ी हकीकत क्या है? हम मखलूक हैं, हमारा एक खालिक है। हम अब्द हैं, हमारा एक माबूद है। हम ग़ुलाम हैं, हमारा एक आका है जो कायनात का मालिक है, कायनात का बादशाह है। तो ये बात वाज़े हुई। दूसरी जो तालीम दी गई वो तालीम ये थी कि शैतान जिन्स के रास्ते दूसरा बड़ा हमला करेगा। यानी वो हमारे अंदर चूंकि एक जबिल्लत है, वो जबिल्लत हैजान पैदा करती है, उसकी तरफ गैर मामूली कशिश के मौके रखे गए हैं। तो ये सारी चीज़ें जितनी हैं वो एक बड़ा इम्तहान पैदा करती है। अभी भी आप गौर करके देखें तो जिस इम्तहान में सबसे बढ़कर लोग नाकाम होते हैं वो दो ही चीज़ें हैं, अनानियत का इम्तहान, जिन्स का इम्तहान। सबसे बड़ी नाकामी इसी में होती है आमतौर पर। तो ये दोनों चीज़ों को मुतय्यन करके बता दिया गया कि यहाँ से शैतान हमलावर होगा। जब ये तालीम मुकम्मल हो गई तो उसके बाद कहा कि अब जाओ दुनिया में, जिस स्कीम के तहत तुम्हें पैदा किया गया है उसके मुताबिक जाके ज़िंदगी बसर करो। और वहाँ पे अल्फाज ये हैं कि इस ज़मीन में तुम्हारे लिए मुस्तकरुल्लाहीन, एक मखसूस मुद्दत तक एक मुस्तकर है, वहाँ तुम्हें रहना है, मेरी हिदायत आएगी, जो मेरी हिदायत की पैरवी करेगा उसके लिए अल्लाह ताला की सुरखरुई है। ये तालीम दे के डिमॉन्स्ट्रेट करके हकायक को इस तरह बता के भेजा गया, इसलिए मैं तो इसको पहली वही कहता हूँ जो अमली तरीके से दी गई, अल्लाह की तालीम और हिदायत का एहतमाम किया गया। ये कोई सजा के तौर पर भेजना नहीं था, कुरान में तो इसका कोई जिक्र ही नहीं है, बल्कि वो तो बशारत दे रहा है कि आदम को जैसे ही अपनी गलती का एहसास हुआ उन्होंने तौबा की, हमने खुद तौबा के कलिमात इल्का किए और उसके बाद आदम को बरगुजीदा किया, नबूवत का मनसब दे दिया।